पृष्ठ संख्या 156 द्वादश अध्याय अनुभववाद ह्यूम। डेविड ह्यूम सन 1711 से 1776। ह्यूम डेविड ह्यूम का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। एडिनबरा विश्वविद्यालय में पढ़े, ग्रीक और लैटिन भाषाएं जानते थे। ग्रीक और रोमन साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रति अभिरुचि थी। ईसाई धर्म के क्रूर आलोचक थे। 25 वर्ष की आयु में ही फ्रांस में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक मानव स्वभाव पर निबंध ट्रीटीज ऑन ह्यूमन नेचर लिखी थी। उस समय दर्शन की इस युगांतकारी रचना की लोगों ने उपेक्षा ही की। ह्यूम ने स्वयं लिखा है, प्रेस से मानो वह मृतक उत्पन्न हुई थी। कुछ वर्षों बाद इसके प्रथम खंड का परिष्कृत संस्करण इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के नाम से प्रकाशित हुआ, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। ह्यूम को जीवन में काफी निराशा मिली थी। उनकी इंग्लैंड के स्टुअर्ट राज्य का इतिहास बहुत प्रसिद्ध और निष्पक्ष रचना है। विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और इतिहासज्ञ एडवर्ड गिबन पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। रूसो से उनका अच्छा परिचय था। वे एडिनबरा के पुस्तकालय अध्यक्ष, इंग्लैंड के पेरिस स्थित राजदूत के सेक्रेटरी और स्कॉटलैंड में सहायक राजमंत्री रहे थे। जीवन का अंतिम समय एडिनबरा में बिताया। मृत्यु के समय भी वे सदा की भांति प्रसन्न रहे। ह्यूम में इंद्रिय अनुभववाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। ह्यूम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, यह कहना तो कठिन है। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि वे वहां तक पहुंच गए जिसके आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है। इस दिशा में लॉक और बर्कले के अधूरे काम को उन्होंने पूरा कर दिया। लॉक के इंद्रिय अनुभववाद के मूल सिद्धांतों को मानकर ह्यूम चले, और जहां लॉक और बर्कले आधे रास्ते से ही लौट आए, ह्यूम ने मार्ग के अंत तक पहुँच कर ही दम लिया। इंद्रिय अनुभववाद को गले लगाकर भी लॉक ने डेकार्त के तीनों तत्वों की, ईश्वर, जीव और जगत की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की। बर्कले ने जड़ तत्व का खंडन करके केवल आत्म तत्व को जीवात्मा और परमात्मा दोनों को माना। ह्यूम ने आत्म तत्व की सत्ता का भी निराकरण करके जीव और ईश्वर दोनों को प्रसिद्ध कर दिया। ह्यूम ने निर्भीक होकर घोषणा की कि इंद्रिय अनुभववाद को मानने पर किसी तत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, न ईश्वर की, न जीव की और न जगत की। पृष्ठ संख्या 157। ह्यूम का यह कथन सर्वथा सत्य है। लॉक के हाथों पढ़कर दर्शन तत्व मीमांसा से अधिक ज्ञान मीमांसा बन गया था। बर्कले ने ज्ञान मीमांसा को महत्व देते हुए तत्व मीमांसा को भी निभाया। ह्यूम ने ज्ञान मीमांसा को ही अपनाया और उसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं आलोचना बना दिया। इंद्रिय अनुभववाद ह्यूम में संदेहवाद और अज्ञेयवाद बन गया। ह्यूम लॉक से इस बात में सहमत हैं कि हमारे ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रिय अनुभव है, जिसके संवेदन और स्वसंवेदन ये दो रूप हैं जिन पर हमारे विज्ञान निर्भर हैं। बर्कले से वे इस बात में सहमत हैं कि सत्ता इंद्रिय अनुभव मूलक है और सारे विज्ञान विशेष तथा वास्तविक होते हैं एवं संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लॉक के अनुसार विज्ञान या तो बाह्य पदार्थों के मूल गुणों के प्रतिबिंब हैं या संवेदन रूप उपगुण और स्वसंवेदन द्वारा उत्थापित विचार हैं। बर्कले के अनुसार विज्ञान किसी के प्रतिबिंब नहीं है, अपितु संवेदन या स्वसंवेदन ही विज्ञान है। ह्यूम के अनुसार विज्ञान किसी बाह्य वस्तु के प्रतिबिंब नहीं है, अपितु संवेदन या स्वसंवेदन के ही प्रतिबिंब हैं। लॉक ने विज्ञानों को संवेदन या स्वसंवेदन को ही विज्ञान माना। ह्यूम ने लॉक के इस भेद की पुनः स्थापना की, किंतु इसको केवल अस्पष्टता की न्यूना अधिक मात्रा का भेद ही माना। ह्यूम के अनुसार हमारा संपूर्ण ज्ञान केवल दो विषयों पर आधारित है, इंद्रिय संस्कारों पर और विज्ञानों पर। इंद्रिय संस्कार या इम्प्रेशन शब्दों का प्रयोग ह्यूम ने सर्वप्रथम किया, किंतु इसका अर्थ नवीन नहीं है। संवेदन और स्वसंवेदन के लिए ही यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। विज्ञान इन संस्कारों के प्रतिबिंब हैं। संस्कार और विज्ञान का भेद गौण है, अर्थात अनुभव की अस्पष्टता और तीव्रता की न्यूनाधिकता का भेद है। संस्कारों की प्रतीति सुस्पष्ट और तीव्र होती है, विज्ञानों की अस्पष्ट और क्षीण। संस्कार इंद्रियज होते हैं, चूंकि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियां जिनसे बाह्य पदार्थ का अनुभव होता है और अंतःकरण जिससे मनोभाव का। अतः संस्कार भी दो प्रकार के हैं, एक तो पंच ज्ञान इंद्रियों के संस्कार जिनको संवेदन कहते हैं, दूसरे अंतःकरण के संस्कार जिनको स्वसंवेदन कहते हैं। ह्यूम ने संवेदन और स्वसंवेदन दोनों को मिलाकर इंद्रिय संस्कार का नाम दिया है। ये संस्कार हमारे मानस पर जो प्रतिबिंब या प्रतिरूप छोड़ जाते हैं उनको विज्ञान कहते हैं। पृष्ठ संख्या 158। ह्यूम के ही शब्दों में इन दोनों का भेद उस तीव्रता और अस्पष्टता की मात्रा में है जिसके साथ ये हमारे मानस से टकराते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। उन प्रत्यक्षों को जो बड़ी शक्ति है और तेजी के साथ आते हैं, हम संस्कार या इम्प्रेशन कहते हैं। और इस नाम के अंतर्गत मैं अपने सभी इंद्रिय संवेदनों या सेंसेशंस को, मनोवेगों या पैशंस को और भावनाओं या इमोशंस को समझता हूँ जो मानस में सबसे पहले प्रवेश करती है। विज्ञानों या आइडियाज से मेरा तात्पर्य विचार या चिंतन पर बनने वाले इनके संस्कारों के प्रतिरूपों या इमेज से है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की साक्षात प्रतीति संवेदन संस्कार है। इनकी साक्षात प्रतीति तीव्र और स्पष्ट होती है, किंतु जब इनकी साक्षात प्रतीति हट जाती है और इनका वेग कम हो जाता है, तब चिंतन या स्मृति में इनके छीण प्रतिबिंब रह जाते हैं, जिनको हम विज्ञान कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनके भेद का अनुभव स्वयं होता है। जिस प्रकार लाख के सरल विज्ञान सारे ज्ञान के आधार हैं, उसी प्रकार ह्यूम के संस्कार भी सारे ज्ञान के आधार हैं। लाख के समान ह्यूम ने भी विज्ञानों को सरल और मिश्र माना है, किंतु दोनों के अर्थों में भेद है। लाख के अनुसार सरल विज्ञान वे हैं जो संवेदन या स्वसंवेदन या दोनों से प्राप्त होते हैं, और मिश्र विज्ञान वे हैं जिनको आत्मा सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनाती है। ह्यूम के अनुसार सरल विज्ञान वे हैं जो अपने मूल्य संस्कारों के प्रतिरूप होते हैं, और मिश्र विज्ञान वे हैं जिनके मूल संस्कारों का होना अनिवार्य नहीं। पहले ह्यूम ने यह कहा कि विज्ञान संस्कारों के प्रतिबिंब होते हैं। बाद में जब उन्होंने देखा कि यह नियम सार्वभौम नहीं, तो इसमें सुधार करने के लिए विज्ञानों के सरल और मिश्र ये दो भेद कर दिए और कहा कि सरल विज्ञानों के मूल बिंबों का होना आवश्यक है, किंतु मिश्र विज्ञानों के लिए यह नियम नहीं है। बिना संस्कार के सरल विज्ञान नहीं हो सकता। जन्मांध को कभी प्रकाश या रूप का विज्ञान नहीं हो सकता, और न बहरे को शब्द का। ह्यूम ने संस्कारों को भी सरल और मिश्र माना है। सरल संस्कार और उनके सरल विज्ञान प्रधान हैं। ये संस्कार ही ज्ञान के मूल स्रोत हैं। जहाँ संस्कार नहीं, वहाँ विज्ञान नहीं हो सकता। जिस वस्तु का संस्कार नहीं होता, उसका ज्ञान केवल भ्रम है। ह्यूम के अनुसार संस्कारों और विज्ञानों को छोड़कर और कोई हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। अतः हमारा ज्ञान संस्कारों और विज्ञानों तक ही सीमित है। हम यह नहीं जानते कि संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं। लॉक ने संस्कारों को बाह्य जड़ पदार्थों के कारण उत्पन्न और बर्कले ने ईश्वर की चित्त शक्ति के कारण उत्पन्न माना था। पृष्ठ संख्या 159। ह्यूम ने दोनों की ही जड़ काट दी और कहा कि जब हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष तक ही सीमित है और जब हमें प्रत्यक्ष केवल संस्कारों और उनके विज्ञानों का ही होता है, तो यदि संस्कारों का कोई कारण हो भी तो वह हमारे लिए अज्ञात ही रहेगा। हमारे मानस में विज्ञानों का प्रवाह नियमित रूप से चलता रहता है, एक के बाद दूसरा विज्ञान आता रहता है। यदि इनमें कोई संबंध नहीं होता तो ये विज्ञान अर्थहीन हो जाते, ये आकस्मिक और असंबद्ध नहीं है, इनमें निश्चित क्रम रहता है। इन नियमों को अनुसंग नियम या लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ह्यूम स्पष्ट कहते हैं कि इन नियमों में कोई सार्वभौम सिद्धांत या अनिवार्यता नहीं है, इनमें केवल स्वाभाविक अपेक्षा या अनंतर है, अर्थात एक के बाद दूसरे का आना स्वभाव मात्र है। दूसरी बात जो इनमें है वह है आत्यंतिक विरोध का त्याग कर, जिसके कारण प्रत्येक विज्ञान अपने अत्यंत विरोधी विज्ञान को साथ नहीं लेता। एक विज्ञान के अनंतर जो दूसरा विज्ञान आता है वह पहले विज्ञान का अत्यंत विरोधी नहीं हो सकता। ह्यूम ने इन विज्ञानों में तीन प्रकार का संबंध माना है। पहला है सादृश्य संबंध या एसोसिएशन ऑफ रिसेम्बलेंस और सिमिलरिटी। दो वस्तुएं यदि समान हो तो एक का विज्ञान होने पर दूसरी का विज्ञान भी उपस्थित हो जाता है। दूसरा है कालगत या देशगत साहचर्य संबंध या एसोसिएशन ऑफ कंटिग्यूटी इन टाइम और स्पेस। यदि दो घटनाएं एक के बाद एक घटित हों अथवा एक ही स्थान में घटित होती हो तो एक के विज्ञान से दूसरी का विज्ञान भी उपस्थित हो जाएगा। तीसरा है कार्य कारण संबंध या एसोसिएशन ऑफ कैजुअलिटी, जिसमें एक के विज्ञान से दूसरे का विज्ञान होता है। इन तीन नियमों से हमारे विज्ञानों में संयोग वियोग आदि होते हैं और इनसे ही हमारा ज्ञान बनता है। जड़ जगत के समान विज्ञान जगत में भी आकर्षण का नियम है। इन तीन नियमों का वहाँ महत्व है जो भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण नियम या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। इनके अतिरिक्त ह्यूम ने चार अन्य संबंधों की भी चर्चा की है। पहला विरोध संबंध रिलेशन ऑफ कंट्राडिक्शन, दूसरा तादात्म्य संबंध रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा गुणों में मात्रा या डिग्रीज इन क्वालिटी, और चौथा है मात्रा और संख्या क्वांटिटी एंड नंबर। इसके बाद ह्यूम कार्य कारण संबंध का आलोचना करने में अग्रसर होते हैं। ह्यूम के दर्शन में द्रव्य का स्थान कारण ले लेता है। जड़ द्रव्य का अस्तित्व लॉक ने इसीलिए स्वीकार किया कि वह हमारे संवेदनों का कारण है। पृष्ठ संख्या 160। आत्मद्रव्य का अस्तित्व बर्कले ने इसीलिए स्वीकार किया कि वह हमारे संवेदनों का कारण है। अतः ह्यूम ने द्रव्य का खंडन करने के पूर्व उस कार्य कारण संबंध का ही खंडन करना आवश्यक समझा, जिस संबंध के कारण द्रव्य की सत्ता में विश्वास किया जाता है। कार्य कारण संबंध सार्वभौम नियम माना जाता है और विज्ञान, दर्शन और धर्म इन तीनों क्षेत्रों में इसका अखंड साम्राज्य है। इसी नियम के आधार पर विज्ञान अपने जड़ तत्व की, दर्शन अपने आत्म तत्व की और धर्म अपने ईश्वर तत्व की सिद्धि करता है। ह्यूम ने इन तीनों तत्वों का खंडन करने के पूर्व इनके इस मूल नियम पर ही कुठारघात किया। आत्मा और परमात्मा को न मानने वाले भौतिक तत्व के वैज्ञानिक भी इस नियम के आगे नतमस्तक होते हैं। यह कार्य कारण नियम भौतिक विज्ञान की एक मौलिक मान्यता है और इसी नींव पर विज्ञान का प्रासाद निर्मित हुआ है। भौतिक विज्ञान का लक्ष्य इंद्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त विशेषों में सामान्य नियम की खोज करना है। इन व्यापक कारणों के अन्वेषण से प्रकृति के नियमों का निर्धारण किया जाता है, किंतु इंद्रिय अनुभव से तो केवल विशेषों का ही प्रत्यक्ष होता है, सामान्य का ज्ञान नहीं। अतः जब तक कार्य कारण नियम का खंडन न हो, तब तक इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ह्यूम ने अपनी आलोचना इस प्रकार प्रारंभ की, क्या इंद्रिय अनुभव से कार्य कारण भाव सिद्ध हो सकता है? यह तो स्पष्ट है कि हम कारण और कार्य कही जाने वाली घटनाओं को अलग अलग जानते हैं, पर क्या हम अनुभव से यह भी जानते हैं कि कार्य और कारण नामक घटनाओं में कोई आंतरिक और अनिवार्य संबंध है? अनुभव से तो हम इतना ही जानते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती है। एक घटना के संवेदन के अनंतर हमें दूसरी घटना का संवेदन होता है, किंतु इन घटनाओं के अनंतर संबंध अर्थात एक अनंतर दूसरी का होना के अतिरिक्त कोई आंतरिक और अनिवार्य सामान्य नियम हमारे अनुभव का विषय नहीं होता। अतः कार्य कारण भाव का तथाकथित सार्वभौम नियम इंद्रिय अनुभूति द्वारा लभ्य नहीं है, यह हमारी कल्पना मात्र है। जब एक घटना का संवेदन या उससे संबद्ध विज्ञान हमारे प्रत्यक्ष का विषय बनता है और उसके बाद तुरंत ही दूसरी घटना का संवेदन या उससे संबद्ध विज्ञान हमारे मानस पर आ जाता है, और जब इस अनंतर की पुनरावृत्ति हमारे अनुभव में कई बार होती रहती है, तो यह हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम एक घटना के संवेदन या विज्ञान के बाद दूसरी घटना के संवेदन या विज्ञान की भी आशा करें। यह आशा ही कार्य कारण भाव की जननी है। पृष्ठ संख्या 161। हमारे इस स्वभाव में ही कार्य कारण भाव की कल्पना का बीज निहित है, किंतु यह हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता मात्र है। यह वस्तुगत, आंतरिक और अनिवार्य संबंध नहीं है। दो घटनाओं का कई बार नियमित रूप से एक दूसरी के तुरंत बाद अनुभव किया जाना इस कार्य कारण भाव नियम की कल्पना का जनक है। मुझे कई बार पानी पीने का और उसके तुरंत बाद प्यास बुझने का संवेदन हुआ तो मैंने यह कल्पना कर ली कि पानी पीना प्यास बुझने का कारण है। मैंने कई बार धुआं देखा और उसके बाद वहां आग भी देखी तो मैंने यह कल्पना कर ली कि जहां धुआं है वहां आग भी अवश्य होनी चाहिए। कोई भी बालक पहली बार आग देखकर यह नहीं सोच सकता कि आग में दाहक शक्ति है या भोजन में भूख बुझाने की शक्ति है। एक बार हाथ जल जाने पर ही इसका अनुभव होता है कि आग से हाथ जल सकता है, किंतु इस शक्ति को तो हम नहीं देखते। अग्नि की दाहक शक्ति का हमें इंद्रिय अनुभव नहीं होता, हमें अनुभव होता है केवल अग्नि का और हाथ जलने का। इन दोनों में कोई आंतरिक अनिवार्य संबंध है? ऐसा अनुभव हमें नहीं होता। हाँ, बार बार इन दोनों घटनाओं का अनुभव करने के कारण हम इन घटनाओं के कार्य कारण भाव संबंध की कल्पना कर लेते हैं। आंतरिक घटनाओं का भी यही हाल है। मैं इच्छा करता हूँ और मेरा हाथ हिलता है। मुझे इन दोनों घटनाओं का अलग अलग अनुभव होता है, किंतु मेरी इच्छा में मेरे हाथ हिलाने की शक्ति का मुझे अनुभव नहीं होता। बार बार ऐसा अनुभव साथ साथ होने पर मैं कल्पना कर लेता हूँ कि मेरी इच्छा में मेरे हाथ हिलाने की शक्ति है। इंद्रिय अनुभव हमें किसी अनिवार्य आंतरिक संबंध का किसी कारण या किसी शक्ति का परिचय नहीं देता। वस्तुएं किसी अनिवार्य संबंध से बंधी हुई नहीं हैं। हमारे संवेदनों या विज्ञानों की उसी रूप में बार बार आवृत्ति होने के कारण हमारा अभ्यास हो जाता है कि एक संवेदन या विज्ञान के होने पर हम दूसरे संवेदन या विज्ञान के होने की भी आशा करें। हमें पृथक पृथक संवेदनों या विज्ञानों के अनंतर संबंध या सक्सेशन का अनुभव होता है। उनके आंतरिक अनिवार्य संबंध या कॉसेशन का अनुभव नहीं होता। वस्तुओं में ऐसा कोई अनिवार्य संबंध हमें प्रतीत नहीं होता। हमारे विज्ञानों के अनंतर भाव को, उनकी इस अपेक्षा को कि एक के बाद तुरंत दूसरा आता है, हम अपने अभ्यास के कारण भ्रमवश एक आंतरिक और अनिवार्य कार्य कारण भाव नामक संबंध मान बैठते हैं। विश्व को एक रूपता के नियम या यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का हमें अनुभव नहीं हो सकता। इंद्रियों के द्वारा हम किसी प्रकार की सार्वभौमता या अनिवार्यता के सिद्धांत पर नहीं पहुंच सकते। पृष्ठ संख्या 162। ह्यूम की दुविधा यह है कि अनंतर संबंध को मानते हुए भी वे कार्य कारण संबंध को नहीं मानते। वे इस समस्या को स्वीकार करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि हमें इसका संतोषजनक समाधान नहीं मिल सकता। कार्य कारण भाव के अनिवार्य नियम को न तो बुद्धि सिद्ध कर सकती है और न इंद्रियां। अनिवार्य नियम सामान्य या सार्वभौम होना चाहिए, किंतु विशेषों में कोई ऐसी सार्वभौमता नहीं मिलती। और जब हमारा सारा अनुभव विशेषों तक ही सीमित है, तो हमें विशेषों की सीमा को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं। इंद्रिया अनुभव से हमें विशेष और पृथक पृथक संवेदन या विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी का ज्ञान नहीं होता। बुद्धि से भी हम इस अनिवार्यता की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि का कार्य केवल संवेदनों या विज्ञानों का संयोग या वियोग, पृथककरण या एकीकरण करना है। और जहाँ संवेदन की गति नहीं, वहाँ बुद्धि की भी पहुँच नहीं। विशेषों से सामान्य का अनुमान करना हमारी बुद्धि की भ्रांत कल्पना हो सकती है, वास्तविक ज्ञान नहीं। हमारे अनुभव से केवल संभावना या प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो सकती है, अनिवार्यता या नेसेसिटी नहीं। ह्यूम ने स्वयं कहा है, मैं इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता कि कोई भी कार्य अकारण हो सकता है। मेरे कथन का तात्पर्य इतना ही है कि कार्य कारण भाव के अनिवार्य और आवश्यक संबंध का ज्ञान न प्रत्यक्ष से हो सकता है और न अनुमान से। यह संबंध हमारी मनोवैज्ञानिक कल्पना है, वस्तु जगत का नियम नहीं।